तृप्ति की मदद से आकाश आशिका को लेकर जा चुका था। हालांकि काजल और आशुतोष के सामने आशिका का सच आ गया था, लेकिन अब उनके पास पछताने के लिए कुछ नहीं बचा था। वे आशिका के मोबाइल और उसकी बुरी यादों के साथ घर पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमान भी अपने घर आ गया था। अभिमान तुरंत पृथ्वी के साथ मिलकर आशिका को ढूंढने के काम में लग गया था। पृथ्वी जानता था कि इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाना है, और सबसे पहले उसने उन प्राइवेट जेट की लिस्ट निकालना शुरू कर दी जो बुक किए गए थे। इसके जरिए वो आशिका की लोकेशन जल्द से जल्द जान सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमान घर पहुंचा तो निशा उसके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिमान ने निशा को देखा, उसने कड़बाहट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। हालांकि उसकी ये बेरुखी देखकर निशा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा अभिमान अकेला है तो उसने राहत की सांस ली। उसके चेहरे के भावों को अभिमान अच्छे से पढ़ सकता था। उसने तंज भरे लहजे में सिर हिलाया और कहा, अब तो आपको खुशी मिल गई ना मिसेज राजवंश। निशा उसके मुंह से ये शब्द सुनकर चौंक गई थी। अभिमान ने कभी आकाश को अपने बाप का दर्जा नहीं दिया था, इसलिए वो उसे मिस्टर राजवंश कहकर बुलाता था, और आज वो उसे भी मॉम कहने के बजाय मिसेज राजवंश कहकर संबोधित कर रहा था। अब एक लड़की के लिए तुम अपनी मॉम से रिश्ता तोड़ दोगे, निशा ने दांत पीसते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन आज मैंने आपको बिल्कुल सही नाम से बुलाया है। आप हमेशा से उनकी पत्नी ही थीं, और मैं ये समझता रहा कि आप उन्हें भूलकर सिर्फ मुझसे प्यार कर रही हैं। अब तक मैं आपकी हर गलती को इनसिक्योरिटी समझकर माफ करता रहा, लेकिन इस बार आपने हद कर दी। आपने सच में अपने पति का साथ दिया और उसे मिस्टर राजवंश तक पहुंचा दिया, अभिमान ने भारी आवाज में जवाब दिया। वो टूटा हुआ लग रहा था। हालांकि अभिमान रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज और हाथ कांप रहे थे। उसके लिए अभी भी यही यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि निशा ने आशिका को कितनी आसानी से आकाश के हवाले कर दिया, वो भी तृप्ति के साथ मिलकर। वैसे भी तुम्हारी डैड कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। जो वो चाहते थे उन्हें मिल गया, और वो अब हमेशा हमारी लाइफ से दूर रहेंगे। आज नहीं तो तुम भी आगे बढ़ ही जाओगे, और मिस्टर सिंघानिया की बेटी सच में एक अच्छी लड़की है, निशा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अभिमान जोर से हंस पड़ा था। निशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी हंसी किसी भी तरह से मजाक नहीं लग रही थी, बल्कि वो उसे डरा रही थी। अच्छा, मिस्टर सिंघानिया की बेटी मेरे लिए अच्छी है, लेकिन कौन सी बेटी की बात कर रही हैं आप मॉम? अभिमान ने भौंहें चढ़ाकर पूछा। उसका बस चलता तो वो निशा से बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन फिलहाल निशा के सामने सच लाना जरूरी था। कौन सी बेटी से क्या मतलब है तुम्हारा? उनकी एक ही बेटी है, आशिका सिंघानिया, मेरा मतलब है आशी। ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? निशा ने सिर हिलाकर कहा। वो काफी सख्ती से बात कर रही थी। क्योंकि आपने मुझे पागल कर दिया है। मिस्टर सिंघानिया की अब एक नहीं दो बेटियां हैं, एक उनकी असली बेटी और दूसरी जो उन्होंने अडॉप्ट की थी, अभिमान बोला। उसकी बातों को सुनकर निशा एक पल के लिए चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ समझ आ गया था। उसने अभिमान की तरफ देखकर अविश्वास भरे भाव के साथ कहा, क्या आशिका जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। हाँ, आगे जिंदा रहेगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप जानती हैं, एक बार फिर मैंने उसे अपनी आंखों के सामने खुद से दूर जाते हुए देखा। न तब मैं उसे रोक पाया था और न ही आज। तब शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, लेकिन अब पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं, अभिमान ने जवाब दिया। उसकी आंखों में अब आंसू छलक पड़े थे, और अब वो और अपने जज्बातों को काबू नहीं रख सकता था। तुम थोड़ी देर के लिए पहेलियां बुझाना बंद करोगे? मुझे बताओ आशिका कहाँ है? वो जिंदा थी तो इतने सालों तक कहाँ थी? सिंघानिया फैमिली तो आज बहुत खुश होगी ना, उन्हें उनकी बेटी मिल गई, निशा ने हल्का मुस्कुराकर कहा। आशिका के मिलने पर उन्हें भी खुशी हो रही थी, तो वहीं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अभिमान ने सार्कास्टिकली सिर हिलाया। ये तो आपको अपनी न्यू फ्रेंड तृप्ति बजाज से पूछना चाहिए ना कि वो इतने सालों तक कहाँ थी। और कहते हुए अफसोस हो रहा है मॉम, सिंघानिया फैमिली खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने आशिका को मिलने से पहले ही उसे खो दिया, अभिमान बोला। वो कुछ पल रुका और गहरी सांस लेकर भारी शब्दों में आगे बोला, जिस लड़की से आप इतनी नफरत करती थीं कि आपने खुद की इनसिक्योरिटी के चलते उसका सौदा कर दिया, वही मिस्टर सिंघानिया की बेटी आशिका सिंघानिया थी। उसका नाम एक था, फिर मैं क्यों नहीं पहचान पाया? हमेशा मुझे आशिका अपने घर के गार्डन में दिखाई देती थी जब भी मैं सिंघानिया मेंशन जाता था, और जब आशिका से शादी करके मैं फिर से घर के अंदर आया तो मुझे वो दिखाई नहीं दी। वो नहीं दिखाई दी क्योंकि वो मेरे साथ थी, वो हमेशा से मेरे साथ थी, और मैं उसे नहीं पहचान पाया। अभिमान रोते हुए बड़बड़ा रहा था, और उसे इन सब में खुद की ही गलती नजर आ रही थी। वहीं ये सब सुनने के बाद निशा लड़खड़ाकर कुछ कदम दूर हो गई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐश ही आशिका थी। कोई गलतफहमी? निशा ने बोलना चाहा, लेकिन अभिमान ने उसे बीच में काटते हुए कहा, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। चाचू ने डीएनए टेस्ट करवाया है और वो पॉजिटिव है। आपको समझ क्यों नहीं आया मॉम? तृप्ति आपका यूज करती रही ताकि आशिका को यहां से दूर ले जा सके और उसका सच किसी के सामने ना आए। आप एक बार फिर किसी और के हाथों की कठपुतली बन गई और आपको पता भी नहीं चला। अभिमान ने निशा को पूरा सच बता दिया था, और अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। निशा की तरफ अफसोस भरे भाव के साथ देखकर अभिमान अपने कमरे में चला गया था, तो वहीं अब बाकी लोगों की तरह निशा के पास भी पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ आकाश जबरदस्ती आशिका को अपने साथ लेकर जा रहा था। फिलहाल आशिका भी बिल्कुल शांत थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त वो आसमान में है और वो चाहकर भी आकाश से लड़ नहीं पाएगी। आशिका बस उनके लैंड होने का इंतजार कर रही थी और साथ ही वो ये भी जानना चाहती थी कि आकाश उसे कहाँ लेकर आया है। आशिका बस मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रही थी कि इस बीच अचानक उनके जेट पर किसी ने हमला कर दिया था। पहले वे लोग सिर्फ उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने हमला किया तो उनका प्राइवेट जेट आसमान में डगमगाने लगा था। आकाश जिसमें ट्रैवल कर रहा था वो एक लग्जरियस प्राइवेट जेट था, जबकि उन पर हमला करने वाले कॉम्बैट हेलीकॉप्टर थे जिसका इस्तेमाल आमतौर पर डिफेंस में किया जाता था। कॉकपिट से एक बार फिर पायलट की आवाज आई, सर जो भी है वो पूरी तैयारी के साथ आया है और मुझे लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर्स किसी दुश्मन के नहीं बल्कि डिफेंस से जुड़े हुए हैं। आकाश के चेहरे पर हैरानी के भाव थे तो एक पल के लिए आशिका भी चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो समझ गई थी कि वे कॉप्टर किसके हो सकते हैं। आशिका को इस तरह मुस्कुराते देखकर आकाश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो उसके पास आया और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए चिल्लाकर बोला, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? इन सबका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? आशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आकाश के लिए आशिका जरूरी थी, लेकिन फिलहाल जो चल रहा था ऐसे हालात में आशिका से ज्यादा जरूरी खुद की जान बचाना था। उसने आशिका को छोड़ दिया था और जल्दी से दो पैराशूट लेकर आया। उसने एक आशिका के तो दूसरा खुद के बांध दिया था। वो जानता था कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह उनके बीच से भाग पाओगे? आशिका ने सपाट लहजे में कहा। बेशक, सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी मेरे साथ चलने वाली हो, आकाश बोला। उसने आशिका के हाथ को जबरदस्ती पकड़ा और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाने लगा।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आकाश के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे और वो तुरंत आशिका को लेकर कुछ कदम पीछे हट गया था। उसने देखा कि वे हेलीकॉप्टर उनके बिल्कुल करीब आ गए थे और उन्होंने रस्सियों के जरिए जेट के अंदर आना शुरू कर दिया था। वे काफी प्रोफेशनल्स लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इस तरह की सिचुएशन से उनका सामना होता रहता है। इसी के साथ आकाश को समझ आ गया था कि उनके बीच से निकलकर वो भाग नहीं सकता था। अगर वो अकेला होता तो बात अलग थी, उसे आशिका को भी अपने साथ लेकर जाना था। आकाश को मजबूरन आशिका का हाथ पकड़कर वापस अंदर आना पड़ा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि इतने हाई प्रोफाइल लोग तुम्हारे दुश्मन बने या तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए। हमें यहाँ रुकना चाहिए और हो सकता है किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। आशिका बिल्कुल शांत खड़ी थी। उनके अंदर आने से पहले ही आकाश ने आशिका को अच्छे से धमका दिया था कि वो अपना मुंह बंद रखे। अपनी तरफ से फ्रेंडली रवैया अपनाते हुए आकाश ने पायलट को स्पीड कम करने का ऑर्डर दिया और अपनी तरफ से मामला साफ करने के लिए उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। जल्द ही कुछ ऑफिसर्स अंदर आ चुके थे। उन सब के चेहरे मास्क से छुपे हुए थे और उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आते ही उन्होंने सबसे पहले आकाश को गन पॉइंट पर लिया। हेलो ऑफिसर, शायद आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई है, मैं बस अपनी होने वाली वाइफ के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहा था। इस जेट के अंदर कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं है जिसकी वजह से आप हम पर इस तरह हमला करें, आकाश ने काफी शांत लहजे में कहा। उसका जवाब सुनकर उनका हेड ऑफिसर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। फिर वो आशिका के पास आया और बिल्कुल धीमी आवाज में कहने लगा, इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि इससे शादी करने जा रही हो? आकाश उनसे कुछ दूर खड़ा हुआ था, इसलिए उसे उनकी बात सुनाई नहीं दी। वहीं आशिका ने उसकी बात सुनकर आंखें घुमाई। आकाश को लगा कि वो ऑफिसर आशिका से कंफर्म कर रहा है। आकाश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप चाहें तो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, हम बस ऐसे ही ट्रिप पर जा रहे थे और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको किसी की तलाश है तो मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे कनेक्शंस काफी अच्छे हैं, आकाश काफी निश्चिंत होकर बोल रहा था। वो जानता था कि आशिका उसके खिलाफ कभी नहीं जाने वाली है। आकाश को लगा कि अब वो कन्विंस हो गया है, लेकिन तभी उसने आकाश की गर्दन पकड़ी और उसे दरवाजे के पास ले गया था। प्राइवेट जेट पूरी गति के साथ ऊपर उड़ रहा था और दरवाजा खुलते ही वे लोग तुरंत इधर उधर हो गए थे, क्योंकि हवा अंदर आने की वजह से चीजें अस्त व्यस्त हो रही थीं। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने आकाश की गर्दन पकड़ी और बिना किसी भाव के बोला, फिर तो मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर स्काई, आपकी पत्नी शादी से पहले ही विडो होने वाली है। उसके मुंह से स्काई शब्द सुनकर आकाश को एक पल के लिए झटका सा लगा, क्योंकि ये नाम उसकी माफिया की दुनिया में चलता था। अगर वे उसका ये नाम जानते थे तो मतलब साफ था कि वे उसके दुश्मन थे या उसी के लिए आए थे। लेकिन इससे पहले कि आकाश कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ऑफिसर ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया था। आशिका बच गई और आकाश का अब ऊपर वाला मालिक है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, कल मिलते हैं।